नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आर्थिक समीक्षा से पता चलता है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की तेजी से आगे बढ़ती रिफॉर्म एक्सप्रेस सही रास्ते पर है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कल संसद में प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा दिखाती है कि भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस कैसे लगातार और मकसद के साथ आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये भारत की आर्थिक बुनियाद की ताकत और सरकार के विकास, नवाचार और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लगातार प्रयासों को दिखाती है। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि पिछले कुछ वर्षों में लगातार सुधारों ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और निवेशकों, कारोबारियों और नागरिकों के बीच विश्वास बनाने में मदद की है। श्री मोदी ने कहा कि ये समीक्षा मजबूत वृहत आर्थिक बुनियाद, लगातार विकास की गति और राष्ट्र निर्माण में नवाचार, उद्यमिता और बुनियादी ढांचे की बढ़ती भूमिका को उजागर करती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक समीक्षा समावेशी विकास के महत्व पर बल देती है, जिसमें किसानों, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों, युवाओं के रोजगार और सामाजिक कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री ने बिटिंग रिट्रीट की प्रस्तुतियों को यादगार बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने बिटिंग रिट्रीट की झलकियां साझा करते हुए कहा कि समारोह में सेना के बैंड ने उत्कृष्ट धुन बजाई। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर, वंदे मातरम के 150 वर्ष, भारत की नारी शक्ति के क्रिकेट विजय, अश्विनी ड्रोन, भैरव बटालियन और प्राचीन गरुड़ व्यूह युद्ध की प्रस्तुतियां शानदार थी। श्री मोदी ने बिटिंग रिट्रीट में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बैंड की विविध रचनाओं की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि ये धुनें जीवंतता से भरी थी और राष्ट्र के प्रहरियों के प्रति गौरव की भावना को दर्शाती हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज से 2 दिन के गोवा दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे कई संगठनात्मक बैठकों की अध्यक्षता करेंगे और विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी के बूथ कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। पार्टी अध्यक्ष का ये दौरा गोवा में भाजपा के बूथ स्तर के संगठन को और मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद ये उनका दूसरा दौरा है। इससे पहले उन्होंने पश्चिम बंगाल का दौरा किया था। नीति आयोग ने कल नई दिल्ली में राज्य समुद्री बोर्डो, बंदरगाह संचालकों और केंद्रीय मंत्रालयों के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में नीति आयोग ने बताया कि बैठक में गैर प्रमुख बंदरगाहों के समक्ष प्रमुख मुद्दों और चुनौतियों और राष्ट्र के बंदरगाह आधारित विकास ढांचे में उनकी भूमिका को मजबूत करने के लिए नीतिगत और संस्थागत सुधारों पर विचार विमर्श किया गया। चर्चा बुनियादी ढांचे के विकास, बहुआयामी संपर्क की रणनीतिक भूमिका, डिजिटलीकरण के माध्यम से परिचालन दक्षता में सुधार और नियामक व्यवस्था मजबूत बनाने पर केंद्रित थी। बैठक में भविष्य की नीतिगत पहलों को आकार देने और समुद्री क्षेत्र में केंद्र राज्य सहयोग को मजबूत करने के लिए विभिन्न हितधारकों से बहुमूल्य सुझाव प्राप्त हुए। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के ट्रांस यमुना क्षेत्र के तेज विकास के लिए 728 करोड़ रुपए की योजनाओं को स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ट्रांस यमुना क्षेत्र विकास बोर्ड की बैठक के दौरान बजट आवंटन की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रांस यमुना क्षेत्र के विकास के लिए धन की कमी नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ट्रांस यमुना क्षेत्र का विकास दिल्ली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। ट्रांस यमुना विकास बोर्ड के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए सभी विधायकों के प्रस्ताव महत्वपूर्ण हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल को फरवरी 2026-27 की अवधि के लिए प्रतिष्ठित ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन मिला है। सेल भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी इस्पात निर्माता कंपनियों में से एक है। इस्पात मंत्रालय ने बताया कि ग्रेट प्लस टू वर्क इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के व्यापक मूल्यांकन के बाद कंपनी को लगातार तीसरी बार ये प्रमाणन प्राप्त हुआ है। शहीद दिवस के अवसर पर राजघाट पर आयोजित होने वाले आधिकारिक कार्यक्रम के मद्देनजर आज मध्य दिल्ली के कुछ हिस्सों में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच यातायात प्रतिबंध और मार्ग परिवर्तित रहेंगे। ये कार्यक्रम राजघाट स्थित महात्मा गांधी स्मृति स्थल पर आयोजित होगा और इसमें कई गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने की उम्मीद है। महिला प्रीमियर लीग WPL क्रिकेट में कप्तान स्मृति मंधाना और ग्रेस हैरिस की 108 रन की आरंभिक साझेदारी की बदौलत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने यूपी वॉरियर्स को 8 विकेट से हरा दिया। यूपी वॉरियर्स ने 8 विकेट पर 144 रन बनाए। बेंगलुरु ने मात्र 13 ओवर एक गेंद में 147 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।